Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Radhe 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Hare
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा
Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jaya Mudiraye. Nashtrayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavat Sevaya. Bhagavati Uttamashloke. Bhaktir Bhavati Nashtakim. Omajnatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Apitam Yena Bhutale Svayam Rupa Tadamahiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yutapad Kamalam Sri Guru na Vaishnavascha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathamritam Sankajivam Sadvaitam Saradhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhamritamcha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राधा रानी और कृष्ण ये दोनों में से बड़ा कौन है जानते हैं आप? राधा जो है वो बड़ी है। पहले राधा का जन्म हुआ, उसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ। राधा एक साल बड़ी है भगवान कृष्ण से, एक साल में 15 दिन कम है, क्योंकि गया अष्टमी जो था लास्ट अष्टमी, उसके अभी कितने दिन हुए? अष्टमी से अष्टमी कितने दिन होते हैं? तो ये 15 दिन हुआ, इसलिए 15 दिन का गैप है इसके बीच में। और एक साल पहले तो आप कहेंगे कि कृष्णाष्टमी पहले आता है राधाष्टमी, मतलब मान लो कि आज राधा रानी का जन्म हुआ तो कृष्ण का अभी नहीं हुआ, अभी एक साल के बाद होगा। अगली जन्माष्टमी जो आएगी तब कृष्ण का जन्म होगा, मतलब एक साल बड़ी हुई कि नहीं। तो इस प्रकार राधा जो है वो एक साल बड़ी है भगवान कृष्ण से। सबसे पहले है राधा और कृष्ण के विषय में जानना आज के युग में सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में राधा और कृष्ण के लिए कई सारी गलत फहमियां हैं। इसलिए इस तत्व को जानना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण अपनी ही शक्ति को या फिर अपने को ही दूसरे स्वरूप में बनाते हैं, वो है राधा। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान कृष्ण ही स्वयं राधा बने हुए हैं, समझ रहे। तो ये भगवान कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। कोई ये सोच सकता है कि राधा कोई और है और कृष्ण कोई और है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान की मुख्य रूप से तीन शक्ति है। कौन सी है तीन शक्ति? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तटस्था शक्ति अर्थात हम जीवात्मा जो है वो तटस्था शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति अर्थात ये भौतिक जगत, ये जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति अर्थात भगवान के धाम में जो शक्ति है उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति उसका मूर्तिमान स्वरूप है दुर्गा, और दुर्गा जो है वो इस पूरे संसार को क्या करती है? चलाती है। जानते हैं दुर्गा किसको कहते हैं? अच्छा, जेल को संस्कृत में दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल होता है ना जेल, उसको संस्कृत में दुर्ग कहते हैं। दुर्ग जिसको पार करके जाना बहुत मुश्किल होता है, इसको दुर्ग कहते हैं। और उसका जो दुर्ग का उसका जो चलाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? दुर्गा। जेल होता है उसका जेलर होता है, दुर्ग का कौन होता है? दुर्गा। दुर्गा एक उपाधि है, उसका नाम नहीं है, समझ रहे। पुलिस वाला उसका नाम नहीं होता है, पुलिस वाला उसकी उपाधि होती है, लेकिन उसी प्रकार ये दुर्गा जो है वो एक उपाधि है, उसका नाम नहीं है। उसका नाम है अंबे, या फिर और भी है वैष्णवी, या फिर और भगवान ने नाम दिए हुए हैं उनका। तो इस प्रकार से भगवान की मुख्य रूप से तीन शक्ति है, ये दुर्गा शक्ति और एक है जीवात्मा तटस्था शक्ति अर्थात हम। हमको तटस्था शक्ति क्यों कहा जाता है जानते हैं आप? क्योंकि हम तटस्था शक्ति इसलिए है क्योंकि हम तट के ऊपर है। आप जानते हैं समंदर, समंदर का तट होता है ना, वो तट के ऊपर कोई व्यक्ति चाहे तो समंदर में भी चला जाए और आके बाहर घूमे फिरे, बहुत कुछ कर सकता है। तो उसके ऊपर स्वतंत्रता है, वो तट पे खड़ा है, वो चाहे तो समंदर में जाके डूब के मरे, नहीं तो फिर इस भौतिक संसार का। इसलिए हमको तटस्था शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। तटस्था शक्ति अर्थात हम तट के ऊपर है, हम चाहे तो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं और नहीं जाना चाहे तो यहाँ पे डूब के मर भी सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार को क्या कहा गया है? बहुत सागर कहते हैं, है ना, इस बहुत सागर कहते हैं। इसमें डूब के मरना है तो भी स्वतंत्र है हम, और चाहो तो भगवान के धाम में जाके अनंत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये स्वतंत्रता होने के नाते इस जीवात्मा को तटस्था शक्ति कहा गया है। और एक शक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसको दूसरे शब्दों में अल्हादिनी शक्ति भी कहते हैं, और इसके भी कई सारे विभाग हैं, संधिनी, सम्मित और अल्हादिनी, इस प्रकार से है विभाग है। तो मुख्य रूप से अल्हादिनी शक्ति जो है उसका मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इस जगत को चलाने के लिए दुर्गा है। हम तो अपनी इच्छा से घूमते हैं जहां जाए वहां, तो हम स्वतंत्र हैं। इस भौतिक संसार को चलाने वाली दुर्गा है, और आध्यात्मिक संसार को चलाने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये तीन शक्तियों को सबको जानना चाहिए कि इस तीन शक्ति के द्वारा भगवान पूरी सृष्टि को चलाते हैं, चाहे वो पराशक्ति हो या अपर। तो इस प्रकार से भगवान पूरी सृष्टि को चलाते हैं। उसमें मुख्य रूप से अल्हादिनी शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी। अल्हादिनी शक्ति किसको कहते हैं जानते हैं? अल्हादिनी का अर्थ होता है आनंद देने वाली। क्या होता है? आनंद देने वाली, अल्हादिनी। अल्हाद का अर्थ होता है आनंद। जानते हैं अल्हाद शब्द किसके लिए लगता है? प्रहलाद, है ना, प्रहलाद, प्रहलाद का नाम प्रहलाद क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्रकृष्ट रूप से अर्थात बहुत ज्यादा भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। आज जानते हैं ज्यादा आनंद प्रहलाद महाराज क्यों प्रदान किए भगवान को? क्योंकि भगवान ने उसको पूछा, चल मैं तुझे ले चलता हूं अपने धाम में। प्रहलाद महाराज बोले नहीं आना है, बताओ इससे बड़ा कौन? अभी भगवान अपने घर पे ले जा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोले हमको नहीं आना है। क्यों जानते हैं? प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं आपके साथ, जैसे आज के लोग करते हैं। उसके बाद आएंगे, हमारा काम हो जाएगा तो हम आपको इतना चढ़ा के जाएंगे। भगवान ने बोला है कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, और व्यापार की दृष्टि से मैंने तुम्हारी सेवा भजन नहीं किया है। जो आप मुझे लालच दे रहे हैं कि मैं तुमको यह दे दूंगा, तुमने मेरे लिए इतना किया है, क्योंकि भगवान का यश बड़ा ना। एक्चुअली प्रहलाद महाराज ने इतना भक्ति किया, भगवान ने उनकी रक्षा की, तो इसमें प्रहलाद महाराज का यश बड़ा, उसके साथ साथ किसका बड़ा? भगवान का। तो भगवान ने उनको क्या कहा? आपको मैं अपने धाम में ले चलता हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं कोई बिजनेस के नाते ये नहीं कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं? केवल आपको आनंद देने के लिए है ना, मैं केवल आपको आनंद देना चाहता हूं। ये सबसे ऊंची भक्ति है, ये सबसे ऊंची भक्ति है। जब कोई व्यक्ति ये सिद्धांत को समझ लेगा, तो समझ लेना कि वो भक्ति करने के लिए अभी तैयार योग्य पात्र है। जो व्यक्ति ये समझ ले कि मैं केवल जो कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, फिर उसके जीवन में बाकी कुछ नहीं रह जाता है। यही चैतन्य महाप्रभु ने इसी भाव को हमें सिखाया है। और जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर आने वाले है ना। वैसे राधा रानी के जन्म की बहुत सारी कथाओं प्राप्त होती है अन्य अन्य पुराणों से, तो संक्षिप्त में मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। भगवान राधा और कृष्ण ये दोनों कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। इन दोनों का एक नियम है, क्या है? वो अपने धाम गोलोक वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते नहीं है। इस समय की बात है, भगवान अपने धाम में नित्य जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन, वहां पर लीला कर रहे थे। और लीला के अंतर्गत भगवान वहां पर एक बिरजा नदी बहती है, बिरजा नदी, और उस बिरजा नदी के किनारे भगवान बैठे हुए थे। और उसके साथ में वो बिरजा जो नदी थी वो एक स्त्री का रूप धारण करके वो भी बैठी थी भगवान कृष्ण के बाजू में। तो उतने में हुआ यूं, घूमते घूमते राधा वहां पर आ गए, और राधा ने आके जैसे ही देखा कि कोई बैठा है, लेकिन एकदम से उसका ध्यान नहीं गया। तो उतने में क्या हुआ, विरजा नदी को यह पता चला कि राधा आ गई है। उसने क्या किया, अपना पानी का स्वरूप बना के फिर से नदी में बह गए। तो भगवान कृष्ण के पास आके राधा ने कहा कि आप अकेले यहां पर क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही। भगवान ने कहा बस ऐसे ही बैठा हूं, नदी का आनंद ले रहा हूं। तब राधा को केवल आभास हुआ था कि वहां पर बैठा है, लेकिन दो तीन दिन के बाद फिर से भगवान को वहीं पर बैठे हुए देखा, और उसके साथ में उस विरजा नदी को भी देखा। अब जानते हैं कि राधा भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, लेकिन हम प्रेम का अर्थ नहीं जानते। इस संसार में प्रेम का अर्थ हमने विकृत बना दिया है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, काम और प्रेम का दोनों का अलग अलग लक्षण है। लोह पात्र यानी हेमे विभूषण, उसमें कहा है कि एक लोह का पात्र है और एक है सोने का पात्र। दोनों में अंतर होता है ना, एक लोहे का पात्र और एक सोने का। सोने के पात्र की वैल्यू उसका बहुत अंतर हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो हमको प्रेम दिखता है वो प्रेम क्या है, वो लोहा है जो जंग लग जाता है कुछ दिन के बाद। लोहा आप देखेंगे जब ये चमकाएंगे तो चमकता है, लेकिन उस पर पानी लगेगा, अगर ये बारिश की सीजन में पड़े पड़े भी उसमें क्या लग जाता है, जंग पकड़ लेता है। लेकिन सोने में कभी जंग पकड़ता है नहीं, पकड़ता है, वो शुद्ध ही रहता है। और क्या उसकी कीमत कभी कम होती है? उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है ना, ये सोना है। तो ऐसे ही भौतिक जगत में ये काम और प्रेम के दृष्टांत को चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार समझाया है, एक लोहा है और एक सोना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कार्य बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जहां पर बात आती है उसको क्या कहा जाता है, काम कहा जाएगा, है ना। भौतिक संसार में केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लोग प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन वो प्रेम होता नहीं है, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआत में व्यक्ति को बहुत प्रेम होता है ना, विवाह से पहले एंगेजमेंट होता है वो टाइम पे बहुत प्रेम होता है, उसके बाद विवाह के बाद थोड़ा कम हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा कम होते होते बच्चा हो गया तो बिल्कुल खत्म, है ना। उसके दृष्टांत देते हैं भक्त लोग कहते हैं कि विवाह से पहले जो उन दोनों का प्रेम होता है, आपस में वार्तालाप होता है, तो लोग बोलते हैं कि आपका मुख जो है वो चंद्रमुखी जैसा है, होता है ना ऐसा। शादी के बाद थोड़े दिन बीतते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपका मुख सूर्यमुखी जैसा है, और जब बच्चा बच्चा हो जाता है एकदम बोरिंग हो जाता है उसको, तो बोलता है कि आप तो ज्वालामुखी बन के मेरे ही घर में फट गई। तो ये भौतिक संसार की प्रेम है ना, ये भौतिक संसार का प्रेम है, उसमें शाश्वतता नहीं होती है ना। ये कुछ काम होता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए केवल प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन ये प्रेम तो होता नहीं है, इसलिए आगे जाके क्या हो जाता है, क्रोध में परिणित हो जाता है। इसलिए भौतिक संसार में कभी प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम केवल आध्यात्मिक जगत में है। जहां पर स्वसुख वासना नहीं होती है उसी को प्रेम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो मैंने आपसे बिजनेस नहीं किया है, हालांकि दे रहे थे, भगवान सामने से दे रहे थे, और ऐसा भी भगवान को नहीं था कि वो मतलब उस पर ऐसा है कि भगवान बस अपने मन से इच्छा हो गई और बेटे को जैसे पिताजी को भी 10 रुपया 15 रुपया दे दिया तो दे दे, लेकिन बोला कि नहीं लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बिजनेस नहीं करता हूँ, ये प्रेम है ना, इसको प्रेम कहा जाता है। उसी प्रकार प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप अगर कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी आप कहेंगे तो फिर ये विरजा को देख के अगर भगवान कृष्ण उसमें खुश है उसके साथ में तो उसको खुश होना चाहिए ना, मतलब इसमें ये दुखी क्यों है। राधा उसके साथ में विरजा को देख के राधा को प्रसन्नता होनी चाहिए क्योंकि कृष्ण उसमें खुश है, लेकिन हमको दिखता है कि राधा ने क्या कर दिया, क्रोध। राधा वहां पे आके कृष्ण को डांटने लगी, तुम ऐसे हो ऐसे हो, और फिर जाके विरजा को वहां पे श्राप दे दिया। विरजा को कहा कि तुमने ऐसा किया है तो तुमको भौतिक संसार में जाना पड़ेगा, तुम यहाँ की अधिकारी। देखिए इसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि राधा जो है वो उनसे द्वेष किया और फिर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं चाहती, वास्तविक में भगवान के हृदय की क्या इच्छा है उसको अच्छी तरह से जानने वाली कौन है, कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो राधा भगवान कृष्ण के मन की इच्छा को जानती थी, इसलिए राधा ने विरजा को श्राप दिया, लेकिन विरजा को सहन नहीं हुआ। विरजा ने कहा कि तुमको भी मैं श्राप देती हूँ कि तुमको भी भौतिक जगत में जाना चाहिए, मतलब दोनों ने आपस में श्राप दिया, ये भगवान की इच्छा है क्योंकि भगवान के धाम में कभी क्रोध नहीं होता है। तो भगवत इच्छा से दोनों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया, उसने कहा कि तू विरजा भौतिक संसार में जाके तुम्हें नदी का रूप धारण करना पड़ेगा, तो इसने भी कहा कि तुमको भी जाके भौतिक शरीर मनुष्य का शरीर धारण। तो राधा रानी को भी यहाँ पर आना पड़ा और विरजा को भी, तो भगवान ने कहा कि जब राधा ही यहाँ नहीं रहेगी तो इस धाम में रह के मैं भी क्या करूंगा, मैं भी चलूंगा। तो फिर ये भगवत इच्छा से दोनों का यहाँ पे आना फाइनल हुआ, निश्चित हुआ। तब हुआ यूं, इस भौतिक संसार में भी भगवान यदि अवतरित होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जन्म ले लेंगे, भगवान किसी के भी घर कैसे भी जन्म नहीं ले लेते, बहुत सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं भगवान उसी के घर जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने एक बार पूछा था कि आपके भगवान इंडिया में ही क्यों प्रकट होते हैं, भारत में ही क्यों प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद महाराज ने जन्म दिया था कि क्योंकि यहाँ पे जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो बेटे को मालूम ही नहीं होता है मेरा पिताजी कौन है, तो फॉरेन में भगवान कैसे जन्म लेंगे, है ना। हालांकि भारत की यही स्थिति होते जा रही है, भारत को भी आज यही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः सभी लोग इंद्र तृप्ति की ओर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यह जवाब करीबन 40 साल पहले दिया था, इसलिए वो समय पे भारत बहुत अच्छा था, इन सारी संस्कृतियों का पालन होता था। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि वहां पे जब माँ बेटे को जन्म देते हैं तो बेटे को ही पता नहीं होता कि मेरा बाप कौन है, तो फिर भगवान वहां कैसे जन्म ले सकते हैं। तो फिर भगवान बहुत पवित्र कुल में ही जन्म ग्रहण करते हैं। इन दोनों का बहुत ही लंबा इतिहास है। आप जानते हैं नंद और यशोदा, इन्होंने बहुत ही तपस्या किए थे, उसके पूर्व जन्म की कथा शायद आपने जन्माष्टमी में सुनी होगी। किंतु मैं अब राधा रानी का जो उनके माता पिता का क्या जन्म है, उनकी क्या कथा है, उसको संक्षिप्त में बताऊंगा। एक मृग करके राजा हुए, मृग राजा के एक सुचंद्र करके पुत्र थे, सुचंद्र। सुचंद्र और कलावती, ये दोनों का आगे चल के विवाह हुआ। तो सुचंद्र और कलावती अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि सभी लोग ऐसे ही जन्म लेके आहार निंद्रा भय मैथुन के द्वारा अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, किंतु मैं इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। इन दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहती हूँ, और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम भगवान के लिए तपस्या करेंगे। तो फिर उन्होंने खूब तपस्या किए, तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए, और ब्रह्मा जी ने आके उनको दर्शन देकर उनसे कहा, हालांकि उन्होंने सत्युग में तपस्या किए थे दोनों, और 12,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, एक दो साल नहीं 12,000 था, और दोनों दंपति ही 12,000 वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए, क्योंकि भगवान और उनकी शक्ति को प्रकट होने के लिए कुछ न कुछ क्या चाहिए कारण। तो फिर उन दोनों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब तपस्या से जब प्रकट हुए हैं तभी सुचंद्र ने कहा कि मुझे मुक्ति दे दो। क्या कहा सुचंद्र ने? कहा कि मुझे इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी के विषय में कोई विचार नहीं किया। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने भी इसके साथ में बरोबर तपस्या किया है, किंतु आप जानते हैं कि स्त्री को अधिकार कम होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, सुचंद्र को तो मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। लेकिन जब ये उसकी पत्नी के विषय में सोचने में आया तब कलावती ने कहा कि अगर तुम उसको मुक्त कर दोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी, क्योंकि तो मुझे भी मुक्त करना पड़ेगा, मैं अकेले कहां जाऊंगी। फिर तब उसने कहा कि आपको मुझे भी मुक्त करना होगा अन्यथा मैं तुमको। तब ब्रह्मा जी के दिमाग में आया कि भगवान को और उनकी शक्ति को अवतरित होने का समय आएगा। तब उन दोनों को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर पे स्वयं भगवान की शक्ति स्वरूपा, राधिनी शक्ति स्वरूपा राधा का जन्म होगा। इन दोनों को आशीर्वाद दिया, और आगे जाके इन दोनों का वो जन्म में तो, क्योंकि 12,000 वर्षों तक तपस्या करके जीवन करीबन एंड पे था, तो फिर उन्होंने जब दूसरा जन्म गोकुल में लिया इन दोनों ने, और गोकुल में सुरभानु और पद्मावती इन दोनों के गर्भ से वृषभानु के रूप में किसका, सुचंद्र का जन्म हुआ। सुचंद्र गए जन्म में थे, इस जन्म में उसका नाम हुआ वृषभानु, और वृषभानु बाबा जो है वो राधा रानी के कौन है, पिता है, इसलिए राधा का एक नाम है वृषभानु नंदिनी, अर्थात वृषभानु बाबा को जिसने बहुत आनंद दिया उसका नाम है वृषभानु। और जानते हैं राधा रानी की माता का गांव कौन सा था? बरसाना। वो तो शादी करके बरसाना आई ना, उससे पहले उसका जन्म हुआ था कन्नौज में, कन्नौज आज है ना सिटी कन्नौज, उसको कान्यकुब्ज करके वर्णन किया गया है, कान्यकुब्ज करके वहां पर राधा रानी की माता का जन्म हुआ, और उसका नाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले भी वो कलावती थी, और इस जन्म में भी उसका नाम उसके माता पिता ने क्या रखा था, कलावती। और इस प्रकार, और उनके माता पिता का नाम था भनंदन और मालावती, इनके गर्भ से कीर्तिदा का जन्म हुआ। कीर्तिदा था, पहले उसका नाम कलावती थी, किंतु शादी करके जब ये गोकुल में आई तो आप जानते हैं कि अभी भी थोड़ा वो पुराना नाम होता है तो जब ये साइड आती है तो चेंज होता है ना। अभी गुजराती में चालू हुआ ये प्रथा, और वालों में तो पता नहीं है। तो यहाँ पे जब ससुराल में आते हैं तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, तो उसका नाम आगे जाके कीर्तिदा रखा गया है ना, कीर्तिदा। तो वृषभानु और कीर्तिदा का क्या हुआ, विवाह हुआ। अर्थात कीर्तिदा फिर कहाँ चली गई, गोकुल में। और गोकुल में जाके वहां पर बहुत वर्ष बीते किंतु इन दोनों को कोई पुत्र हो नहीं रहा था, इन दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। सारे गांव वाले बहुत दुखी रहते थे, सारे गांव वाले चाहते थे कि इनको कोई पुत्र हो जाए। सारे गांव वाले की इच्छा थी कि इनके घर पे पुत्र हो। देखिए, अगर गांव में हमारे साथ हमारा संबंध यदि अच्छा हो तब हमारे लिए कोई प्रार्थना करेगा ना। मतलब इन दोनों का व्यवहार कितना अच्छा होगा कि सारे गांव वाले इनके लिए मन्नत मांगते थे। हमारी स्थिति है कि हम अपने लिए ही मांगते थे, लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा की कीर्ति इतनी गांव में थी कि सभी लोग इनके लिए मन्नत मांगते थे कि इसको कोई अच्छा सा पुत्र हो जाए। किंतु तो बहुत वर्ष बीतने के बावजूद भी कोई पुत्र। एक समय की बात है, ये कीर्तिदा अपने सखियों के साथ में यमुना किनारे जल भरने गई थी, और वहां पर जल भर के और थोड़ा स्नान आदि करके क्रीड़ा करते थे सखी ना। तो वहां पर एक कमल के ऊपर एक बच्चे को आते हुए देखा। बच्चा था, एक छोटी सी बच्ची, सौ पखड़ियों वाला कमल था वो, साधारण कमल नहीं, सौ पखड़ियों वाला कमल उस यमुना नदी में तैर कर आ रहा था। और उस तैरते आते हुए कमल के ऊपर एक बच्ची को देखा, तो इन सखियों ने क्या किया, वो कमल पास लाकर उसने से बच्चे को उठा लिया। और सब लोग ने कहा कि ये बच्ची आज से कौन संभालेगा, कीर्तिदा, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से यहाँ पर केवल आपके लिए आई है। और सब लोग ये प्रार्थना भी कर रहे थे और यमुना में बहते बहते आए। तो हमको ये प्रश्न होता है कि क्या यमुना में से प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं हिमालय की पुत्री कौन हुई थी, पार्वती। उसके पहले वो सती थी, लेकिन सती जब यज्ञ में अपने प्राण छोड़ दी उसके बाद हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उसका जन्म हुआ। और पार्वती के रूप में जन्म हुआ और पार्वती का आगे जाके विवाह किसके साथ हुआ, शंभु के साथ है ना, शिव जी के साथ। और शिव जी के साथ जब उनका विवाह हुआ तब हिमालय का एक भाई था जिसका नाम था विंध्याचल। विंध्याचल जो उनका भाई था, उनके मन में हुआ कि अगर इसकी बेटी शिवजी से विवाह करती है तो मुझे भी एक ऐसी बेटी प्राप्त करनी है जो बेटी कैसी हो उससे भी बड़े से विवाह करे, अर्थात कौन, भगवान से है ना। तब उसने सोचा कि मैं ऐसी बेटी प्राप्त करना चाहती हूँ जिसका विवाह किसके साथ हो, भगवान के साथ, अर्थात शिवजी भी उसकी पूजा करने चाहिए, उसकी मुझे, वो मुझे पति के, इस बेटी का पति चाहिए। तब उसने भगवान की खूब तपस्या की और तपस्या के पश्चात उसको ये श्रीमती राधा रानी अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन उसकी आठ पुत्री थी, कितनी, विंध्याचल के यहाँ कितनी पुत्रियों ने जन्म लिया, आठ। और उस आठ पुत्रियों ने जन्म लिया और उस आठ पुत्रियों में से, आप जानते हैं वो समय पे वो थोड़ा कंस का राज्य चल रहा था है ना। और कंस के, आप जानते हैं उसकी बहन का विवाह था और उसको मारने के लिए तैयार हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था, वो आकाशवाणी हुआ था। आकाशवाणी में हमने केवल इतना सुना है कि क्या हुआ था, कंस तुमको मारने वाले ने जन्म सुना था, इतना ही सुना था। लेकिन और भी आगे गर्भ संहिता आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि उस शक्ति ने और भी आकाशवाणी में और भी आकाशवाणी हुई थी। उसमें इसका वर्णन हुआ था कि तुमको मारने वाले ने तो जन्म ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, एक ऐसी लड़की ने जन्म लिया है कि जिसके हाथ का कोई बनाया हुआ खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। क्या आकाशवाणी हुई, एक ऐसी पुत्री ने जन्म लिया है कि जिसके हाथ का अगर कोई खा लेगा तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, और जो उसके हाथ का खा लेगा वही तुम्हारा वध भी करेगा। मतलब अब जानते हैं राधा जो है वो नंद बाबा के घर पे कभी कभी कुकिंग करने के लिए जाया करती थी, वहां पर जाके भोजन पकाती थी, वो भी स्पेशल कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं। तो इस प्रकार राधा रानी के हाथ का बनाया हुआ कौन खाएंगे? कृष्ण। और कृष्ण के द्वारा फिर मरेगा कौन? कंस। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। और इस प्रकार कंस तभी से चिंता में था, किंतु पहले तो उस बेटे को तो बाद में मारेंगे जब खिलाएगी सब, लेकिन उससे पहले वो लड़की को मारो जो खिलाने वाली है, जो बनाएगी सब जाके वो खाएगा और सब जाके मुझे मारेगा ना। जब बनाएगी नहीं तो खाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो मारेगा नहीं। तब उसने क्या विचार किया, इस संसार में जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं सबको मारना। और आप जानते हैं कि मारने में सबसे फेमस कौन था उसके पास? पूतना बाल घाती, उसका नाम ही था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि पूतना का सबसे बड़ा एक उपाधि था बाल घाती, मतलब वो बालकों को ही मारती थी, बच्चे लोग को मारती थी। तभी वो कंस के आज्ञा में थी, कंस ने उसको ऑर्डर दिया कि जाओ इस दुनिया में जितनी बच्चियां हैं एक साल के अंदर सबको वध कर दो। तभी पूतना जब ही फिरते फिरते विंध्याचल के वहां गई, उसने देखा कि 8 बच्चियों का यहाँ पर जन्म हुआ। लेकिन विंध्याचल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जैसे ही उसकी बेटियों को उठाया, और आप जानते हैं पूतना जो है उसका एक दूसरा उसको अवार्ड मिला हुआ, उसका क्या नाम है? खेचरी, मतलब बच्चे को लेके सीधे आकाश में उड़ जाते थे, और इसके यहाँ 8 बच्चों को उठा के वो सीधे आकाश में उड़ गए। और जैसे ही आकाश में गई उसने वहां पर उसके जो पिता थे उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके साथ युद्ध करके तो हम जीत नहीं सकते, इसलिए वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। और जब यज्ञ प्रारंभ किया तो उस यज्ञ के दौरान यज्ञ में इतनी शक्ति थी उस मंत्र में कि वो पूतना के हाथ में से एक एक करके बच्चे जो है वो गिरने लगे, वो संभाल नहीं पाई अपने हाथ में। तो अंत में ये राधा जो थी वो लास्ट तक उसके हाथ में थी, तो लास्ट में जब उसने मंत्र पढ़ा तो वो राधा उसके हाथ से छूटी और छूट के सीधी गांव गई यमुना में। लेकिन उसका पता फिर विंध्याचल को पता नहीं चला, और वो जाके सीधी कमल पे गिरी और बैठे बैठे कहां आ गई? यहां पर कीर्ति जाके पास। इस प्रकार राधा रानी का जन्म की कथाएं प्राप्त होती है। और भी पुराणों में अन्य अन्य तरीकों से श्रीमती राधा का जन्म कथा है। और राधा रानी जो है वो महाभाव स्वरूपा है। महाभाव स्वरूपा का अर्थ होता है, भाव का अर्थ होता है भक्ति। सबसे ऊंची भक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो किसमें है? राधा रानी में, क्योंकि भगवान की अभिन्न शक्ति है ये, और उन्हीं के द्वारा हमको वास्तविक भक्ति को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। बाकी इस संसार में भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं, किंतु श्रीमती की राधा रानी के अंदर जो भाव है उस भावनाओं को ग्रहण करके हमें भक्ति करना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा है, नाहम विप्रा न च नरपते नापि वैश्य न शूद्र नाहम वर्णो न च ग्रह पतो वनस्थो यतिर्वा किंतु क्रोध निखिल से परमानंद पूर्णामृता से गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानु दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई मैं राजा नहीं हूँ, कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, इस प्रकार मैं न वर्णी हूँ न आश्रमी हूँ, मैं किसी वर्ण में नहीं आता हूँ और किसी भी आश्रम में नहीं हूँ, मेरे लिए केवल एक ही उपाधि है, मैं गोपियों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है, और इसी भावनाओं को प्रदान करने के लिए या फिर इसी मार्ग पर चलने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए। क्योंकि संसार में क्या आप सोचते हो कि भक्ति नहीं हो रही थी? आज से 500 वर्ष पूर्व भक्ति बहुत हो रही थी, हमसे भी ज्यादा भक्त लोग थे, लेकिन कैसे थे? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ, ऐसे लोग थे। इसलिए भगवान को यहाँ पे आके शुद्ध भक्ति की धारा को प्रवाहित करने के लिए आना पड़ा, वो भी श्री शुद्ध भक्ति कौन दे सकता है, जो शुद्ध भक्ति करता है, और शुद्ध भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इसलिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी का भाव उनके हृदय को चुरा कर भगवान यहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने सिखाया कि हमको किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। अब जानते हैं राधा रानी की महाभाव या फिर उनकी भावनाओं की सर्वोत्कृष्टता क्या है। आप देखेंगे कई बार हम देखते हैं कि राधा जो है वो कई बार रूठ जाती है, किससे? भगवान कृष्ण से, है ना। भगवान कृष्ण से क्या होता है, वो रूठ जाती है। हमको देखिए, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कृपया उसको साधारण दृष्टि से मत लीजिए। जो हमारे साथ होता है उसी प्रकार उनमें भी होता है। हमारे रूम में मैंने पहले ही बता दिया, हमारे पास जो है वो लोहा है, वो केवल दो दिन का होता है, बाद में वो है ना। लेकिन मैं जिस बातों को बताने जा रहा हूँ वो शुद्ध प्रेम है ना, इसमें काम की कोई गंध नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान राधा और कृष्ण ने इस भूमंडल पे आके बहुत सारी लीलाएं की। राधा रानी ने वहीं पर भगवान कृष्ण से कह दिया था कि जहां पर गोवर्धन नहीं है और जहां पर यमुना नहीं है और जहां पर ये वृंदावन नहीं है मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। राधा ने वहां पे भगवान कृष्ण से श्राप मिला, उसके बाद कह दिया कि मैं जाऊंगी लेकिन ये वृंदावन वहां पे जाना चाहिए, तब जाऊंगी। तो फिर वो वृंदावन कैसे वहां पर आया उसकी भी बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन उस ब्रज भूमि में कहा कैसे पहुंचा, तो और यमुना भी कैसे आई, ये सारी कथाओं को प्राप्त होती है। तो भगवान ने वहां से गोवर्धन को भेज दिया, यमुना को भी भेज दिया और ब्रज भूमि को भी यहाँ पर भेज दिया, फिर राधा रानी को भेज दिया और फिर खुद भी आ गए। और इस प्रकार यहाँ पर आके कई सारी लीलाएं हैं। हमारे गुरु महाराज एक लीला का वर्णन कर रहे थे कि राधा जो थी वो एक साल बड़ी थी, एक साल के बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो राधा जो थी वो कभी कभी, आप जानते हैं दो भाई होते हैं, एक माँ के दो बेटे, तो बड़ा बेटा जो होता है वो अपने छोटे भाई को उठा उठा के खेलने के लिए लेके चला जाता है ना, माँ परेशान रहती है बेचारी, वो किधर गिरा देगा तो उसका सर फट जाएगा। तो राधा जो वो बड़ी थी, इसलिए कभी कभी हम क्या करते थे, नंद बाबा के घर पे जाके कृष्ण को लेके खेलने के लिए निकल जाते थे। और वन में जाके ये भगवान कृष्ण है, ये तो हालांकि बालक स्वरूप में भी बने हुए हैं, लेकिन बालक से पहले उन्होंने कौन सा रूप दिखाया था, वो जेल में चतुर्भुज रूप दिखाया था भगवान ने। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया, इसलिए भगवान ने छोटा सा बालक का रूप ले लिया। तो भगवान को कभी बड़ा बनना है कभी छोटा बनना है उसमें नियम नहीं है। हमारे लिए तो नियम है कि पहले बाल छोटा रहेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, ये हमारे लिए, उनमें ऐसा नियम नहीं है, कभी भी छोटे होते कभी भी बड़े हो जाते। और एक बात है, फिर भी उनकी शक्तियों में कभी कमी नहीं आती है। हम तो छोटे हैं तो हमारी शक्ति नहीं है, बड़े हुए तभी थोड़ी आई, अब बूढ़ा होगा तो खत्म है ना। तो ये हमारी स्थिति, किंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, छह दिन में वो पूतना को मार दिए, है ना। सात साल की उम्र में गोवर्धन, जिसकी परिक्रमा करने में हमारी सांस खुल जाती है कि नहीं, तो उतने बड़े गोवर्धन को भगवान ने अपनी ये कनिष्ठा उंगली से धारण कर लिया था। तो भगवान के लिए ये मान्य नहीं रखता है कि भगवान छोटे हैं या बड़े हैं। तो राधा क्या करते थे, उनको वहां से उठा के वन में चले जाते थे और वहां से जाके उनके साथ कई सारी लीलाएं करती थी। फिर भगवान छोटे बन जाते थे, राधा आके उसको घर पे। तो भगवान ने लीलाएं करना बचपन से ही चालू कर दिया था, ऐसा नहीं कि भगवान बड़े हुए उसके बाद भगवान ने लीलाएं प्रारंभ की। हालांकि राधा को और कृष्ण में, राधा रानी हमेशा इसी भाव में घूमती है कि मैं कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान करूं। राधा रानी हमेशा यही भाव में घूमती है कि मैं कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करूं। आज जानते हैं राधा रानी के भाव को प्रकट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा शकम में श्लोक लिखे, उसमें सबसे राधा उच्च भक्ति का भाव को प्रदर्शित करता हुआ अंतिम श्लोक है, कौन सा है वो, अश्लिष्य वादरताम पिनश्व माम अदर्श नाम मर्महताम करो सुथा तथा वाद धातु लंपटो मत प्राण नाथस्तुत एव ना पर, अर्थात मेरे साथ आप कुछ भी करो लेकिन मेरे प्राणनाथ आप है। क्योंकि कभी कभी भगवान कृष्ण क्या करते थे, जानबूझ के भगवान कृष्ण अपने साथ में राधा की जो सौतन थी अर्थात दूसरी गोपी को भगवान उसके कंधे पे हाथ डाल के उसके सामने घुमा देते हैं, मतलब राधा को क्या होगा, दुख होगा। लेकिन राधा ये नहीं सोचती थी, राधा सभी श्लोक को उच्चारण किया, क्योंकि राधा रोट के फिर चली जाती थी जब देखती थी कि चंद्रावली ईश्वर का, तो रोट के जब वो चली जाती थी तो ललिता आदि सखी भी उनके साथ चली जाती थी। तभी ललिता आदि सखी उसको ताने मार के बोलती थी कि तुम क्यों उस कृष्ण के पीछे पड़े हुए, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत गोपियां पड़ी है, तुम छोड़ दो उसको। तभी राधा रानी इस श्लोक को उच्चारण करती थी और कहती थी कि आश्लेष सेवा, वो कुछ भी करे मुझे, अपने पैरों तले कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरे प्राणनाथ केवल एक ही है, वो है कृष्ण, और अगर वो घूमते भी है तो उसमें मेरी प्रसन्नता है, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख होता है। एक इसके ऊपर एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिए थे, एक बहुत सती स्त्री थी और उसके जो पति थे वो ब्राह्मण थे और वो प्राय वृद्ध भी हो चुके थे, बहुत वृद्ध हो गए थे और उसको कुष्ठ रोग हो चुका था, और कुष्ठ रोग के कारण उसका शरीर जो है वो पूरा दल रहा था। अनंत कुष्ठ रोग होता है तो पूरा शरीर में से पस आदि निकलता है और पूरा शरीर धीरे धीरे जल के उसकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार उसका शरीर जो पूरा गल रहा था और उसकी पत्नी जो थी वो सती थी, उसका मन अपने पति के अलावा और किसी में नहीं गया था, और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करती थी। वो जब उसकी सेवा करते थे, अब उस वर्ष में भी वो बूढ़ा है और उसके बावजूद भी उसको कुष्ठ रोग हुआ है, और फिर भी उसने क्या इच्छा प्रकट की अपने पत्नी के सामने, अपने पत्नी से कहा कि मुझे इस शहर में जो सबसे अच्छी वेश्या है उसके साथ मुझे संग करना है। इस प्रकार की जिज्ञासा उस ब्राह्मण ने उस मृत्यु अवस्था में की। अब कितने दिन जीने वाला है, वो मरने ही वाला था, क्योंकि कुष्ठ रोग से पूरा शरीर गल गया है, बुढ़ापा भी है, तो कितने दिन जिएगा। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही सती थी, उसने सोचा कि मेरी पत्नी पति की आज्ञा को पूर्ण करना ये मेरा धर्म है। उसने जाके उस वेश्या से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके मेरे पति की इच्छा को पूर्ण कीजिए। लेकिन उसका वो जो वेश्या थी वो जानती थी कि अगर मैं उनके साथ संग करूंगी तो बाकी सब लोग मेरे पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि कुष्ठ रोगी है और वृद्ध भी है, उसके साथ संग करने से बाकी लोग भी है ना छूट जाएंगे। तो इस भावना से उस वेश्या ने मना कर दिया, ऐसे भी कुष्ठ रोगी है उसको देखना पसंद नहीं करते हम लोग, उसको छुएगा कौन। कुष्ठ रोगियों की हमने कई बार ऐसा देखा है, आप जो जाएंगे कभी कभी अस्पताल में, कुछ दर्दियों की ऐसी हालत होती है कि उसको देख के हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी अवस्था आ सकती है। तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया, उस सती ने उसके वहां जाकर सेवा करना प्रारंभ कर दिया, उस वेश्या के घर पे जाके झाड़ू करना, पोछा करना, उसके लिए बर्तन मांगती थी, सारा काम करती थी, बहुत दिनों तक उसकी सेवा की। फिर उस वेश्या ने कहा कि क्यों तुम मेरी इतना सेवा करते हो, बोले कि बस एक इच्छा है उसको पूरी कर दो, मेरे पति चाहते हैं उस इच्छा को पूरी कर दो। तभी वेश्या उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूँ, लेकिन तुम क्या उसको रात को मेरे घर पे लेके आना, मैं वहां नहीं आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। तभी उस ब्राह्मणी ने क्या किया, अपने पति को एक टोकरे में बिठा के सर पे लेके उसको वहां पर जा रही थी, अब सर पे उठा के उसको लेकर जा रही थी। अब हुआ यूं, जब लेके जा रही थी तो उतने में जाते जाते बीच में एक ऋषि सोए थे, क्षमा करिए मैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक ऋषि सोए थे, मांडव्य ऋषि, मांडव्य ऋषि वो सोए थे, वो सोए थे तो चलते चलते उसको गलती से पैर छू गया। और मांडव्य ऋषि बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनको जब पता चला कि मुझे कोई लात मार के आगे बढ़ गया, तब उनका क्रोध सहन नहीं हुआ, उसने कहा कि जिस कारण से मुझे इस अपराध को सहन करना पड़ा उसकी कल सुबह तक मृत्यु हो जाएगी, अर्थात उस ब्राह्मण की सुबह तक मृत्यु हो जाएगी जो उसका पति है। तभी उस सती का इतना प्रभाव था, उस सती ने भी सामने उसको बोल दिया कि अगर मेरा मन अपने पति के अलावा कहीं और न गया हो तो कल सुबह सूर्य उदय नहीं होगा। अब एक बाजू ये मांडव्य ऋषि की बात है और एक बाजू इनकी बात है। और हो क्या, अभी आप जानते हैं सती की भावनाओं को कभी कोई ठुकरा नहीं सकता है, सती के वचन को कभी ठुकराया नहीं जाता है। तभी उस सती की बात को रखने के लिए सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ, सुबह सूर्य का उदय हुआ ही नहीं और सारा जगत परेशान। और सारा जगत जब परेशान था तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए कि सूर्य आगे बढ़ ही नहीं रहे, सूर्य के लिए कुछ करिए। तभी जाके ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों कहाँ आए, सूर्य के पास नहीं आए, ये सती के पास आए और उसने कहा कि कृपया करके पूरी दुनिया को परेशान मत करो अपने पति के लिए। तो बोले कि वो ऋषि में इतने सामर्थ्यता है, उसका अगर वो दुरुपयोग कर सकते हैं, गलती में पैर छू जाने से अगर ऐसे श्राप दे दे तो फिर इन ऋषियों की क्या महिमा है। तब उसने भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर सूर्योदय हो गया तो सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, किंतु जैसे ही मृत्यु होगी मैं आके तुरंत तुम्हारे पति को जीवित भी कर दूंगा, ये मेरा वचन है। तो आप सोचिए ये मैं किस लिए आपको बता रहा हूं कि भले ही वो ब्राह्मण की पत्नी है ये, किंतु उसका भाव कितना ऊंचा है। इसी प्रकार राधा रानी जो है इसमें निस्वार्थ प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, है ना। भगवान कृष्ण यदि किसी गोपी के साथ घूमते भी है तो राधा रानी को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो आनंद का अनुभव करती है। तो कभी कभी आप सोचेंगे कि राधा जो है वो मानगढ़ आप गए होंगे, बरसाना में मानगढ़ है, गए हैं आप, और मानगढ़ की क्या कथा आप जानते हैं। राधा जो है वो कभी कभी मान कर लेती है, क्या करती है, मानगढ़ पे मान कर लेती है। मान करना मतलब रूठ जाना, हाँ। वो कथा को मैं दृष्टांत के रूप में बताया था। फिर तो सूर्योदय हो गया, भगवान ने उसको जीवित भी कर दिया और उसको कुष्ठ रोग जो था वो भी चला गया, उसका कुष्ठ रोग भी गया और फिर बहुत सालों तक वो जिया उस ब्राह्मण ने। तो इस प्रकार सती का दृष्टांत भगवान के प्रेम के लिए, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था। इस संसार में जो प्रेम है उसमें स्वार्थ है ना, तो निस्वार्थ प्रेम का एक दृष्टांत था। उसी प्रकार राधा जो है भगवान से निस्वार्थ प्रेम करती है। तो भगवान के विषय में हम राधा के विषय में सुनते हैं कि कभी कभी वो मान भी कर लेती है, मतलब भगवान कृष्ण से रूठ जाती है और उनसे रूठ के उनसे बात नहीं करती है, उनसे मुंह बिगाड़ती है। आप जानते हैं रूठ जाते हैं तो ये सारी घटनाएं बनती है ना। तो जब ही राधा रानी रूठ जाती है तो आप सोचेंगे कि तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई प्रेम में रूठना, और ये तो यहां भी होता है ये झगड़ा वगैरह। लेकिन आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवान कृष्ण की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा है कि यदि गोपियां रूठ भी जाती हैं तो उससे मेरे आनंद में और वृद्धि होती है। भगवान क्या कहते हैं कि अगर गोपियां रूठती हैं तो मेरे आनंद में और वृद्धि होती है, मतलब भगवान को और आनंद मिलता है उससे, क्योंकि भगवान लीला का रस लेते हैं, लीला का आस्वादन करते हैं। तो राधा कई बार रूठ जाती थी और रूठ जाने के बाद भगवान कृष्ण उसको कई बार मनाया करते थे, कई बार तो तुरंत मान जाती थी राधा। लेकिन एक बार हुआ यूं, मानगढ़ की लीला, भगवान कृष्ण से रूठी हुई राधा मान ही नहीं रही थी। भगवान ने बहुत पैर छुए, बहुत कुछ किया लेकिन नहीं मानी। और जब ही अंत में राधा नहीं मानी, भगवान कृष्ण क्या बन गए, मोर बन गए, पिकॉक। मोर के रूप में भगवान नृत्य करने लगे, वहां पर मोर कुटीर भी है ना, मयूर कुटीर। भगवान उस पर्वत के ऊपर चढ़ के मयूर के रूप में नृत्य करने लगे। तभी आगे चल के वर्णन है कि राधा भी खुश हो गई और अंत में भगवान वो भी एक मोर का रूप लेके दोनों फिर नाच किए और उस पर्वत का नाम मयूर कुटीर है जहां पर भगवान ने नृत्य किया था, दोनों मोर बन के नाचे थे। तो इस प्रकार राधा का यदि रुठना भी होता था तो किसके लिए होता था? भगवान की प्रसन्नता के लिए, न कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, है ना। भगवान से अगर राधा रुठ भी जाती थी तो उसमें उनकी प्रसन्नता हुआ करती थी। और आप जानते हैं प्रसिद्ध कथा, शायद अभी बच्चे लोग ड्रामा भी करने वाले हैं, एक समय की बात है, भगवान तो मथुरा चले गए थे वृंदावन छोड़ के, और मथुरा से फिर द्वारिका, और 16108 उनकी पत्नियां थी, है ना। तो इस प्रकार 16108 से साथ विवाह हो गया था, कई सारी भगवान ने शत्रुओं का वध भी किया था। तो मुख्य बात है कि भगवान कृष्ण ने एक बार बहुत सुंदर लीला की। उन्होंने क्या लीला की कि भगवान कृष्ण बेड पे सो गए और अपने शरीर को तपा दिए, और भगवान ने कहा कि मुझे बहुत जोर से बुखार आ रहा है, मुझे बहुत जोर से फीवर हुआ है, कृपया करके मुझे अभी मिलने मत आओ कोई। तब उसने में नारद मुनि आ गए, पर नारद मुनि को तो किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो नारद मुनि तो जानते हैं कि ये कभी रोगी नहीं हो सकते, क्योंकि रोग इसके लिए बना ही नहीं है। तभी नारद मुनि ने कहा कि प्रभु ये कौन सी लीला है, क्योंकि आपको बुखार आ गया, क्योंकि आपको तो कभी बुखार आ नहीं सकता है, तो ये आपकी कौन सी लीला है। तब नारद ने कहा देखो मेरा जो बुखार है वो स्पेशल है, ये संसार में लोगों को आता ऐसा बुखार नहीं है। भगवान ने कहा इसका इलाज भी मैं जानता हूं, अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूली लाकर मेरे सर पे डालेगा, क्या करना है, अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूली अगर मेरे सर पे लाके डालेगा तो मेरा बुखार चला जाएगा। आप यहां पर नाचिए सारी धूल लेके मदन मोहन के सर पे, तो भगवान कहते हैं मेरा बुखार चला जाएगा। अभी नारद मुनि ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मांग के लाता हूं, तुम्हारे भक्तों की कमी थोड़ी है, पूरा दुनिया भरा है, बहुत सारे भक्त है आपके, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नारद मुनि ने सोचा कि बाहर जाने की कहां जरूरत है, घर में ही सबसे पहले तो कई सारी भक्ता है भगवान की, क्योंकि रुक्मणी जो है वो भगवान की सबसे अच्छी भक्त है। तब रुक्मणी के पास नारद मुनि गए, नारद मुनि कहा कि देखो तुम्हारे पतिदेव को बुखार आ रहा है किंतु उसका इलाज मेरे पास है। बोले क्या है, बोले कि तुम अपने चरणों की धूली दे दो, उस धूली को मैं जाके भगवान कृष्ण के सर पे डाल दूंगा, उसका बुखार चला जाएगा। अभी रुक्मणी ने सोचा कि ये घाटे का सौदा है, क्या है ये घाटे का सौदा, क्योंकि अगर मैं अपने चरणों की धूली उसको दे दूं और वो लेके जाए और भगवान कृष्ण के सर पे डाल दे तो मैं कई वर्षों तक नरक में सड़ूंगी। देखो भाई हम भक्ति करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ये नरक में जाना पड़े ऐसे काम के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि हम उसकी पत्नी है, उसके साथ में रहना चाहती है। रुक्मणी ने उसको क्या बोल दिया, ये नहीं हो सकता। उसके बाद सत्यभामा के पास गए, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, ये नहीं हो सकता है महाराज, बाकी सब कुछ बोलो, उसके लिए सब बना देंगे, सब दवाई बना देंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते, अपने चरणों की धूली दे देंगे तो हमारा नरक कंफर्म, और ऐसा नरक कंफर्म होगा कि कभी छूटने का उसमें एक्सपायरी डेट ही नहीं होगा, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। 16108 के पास घूमे, नारद मुनि अंत में थक गए, सोचा कि ये सब, और भी नारद मुनि अन्य जगहों पर घूमे लेकिन कोई भक्त तैयार नहीं हो रहा था। अंत में नारद मुनि आए, भगवान कृष्ण से बोला कि आपका बुखार अभी जाने वाला नहीं है, आप पड़े रहो ऐसे। सो तभी भगवान ने कहा जाओ वृंदावन में थोड़ा उधर भी ट्राई मारो, क्योंकि यहाँ पे तो सब बाहर वाले भक्त है, लेकिन रियल भक्त कहाँ पे है, वृंदावन में। अब वृंदावन जाइए, तभी नारद मुनि गए वृंदावन, और वृंदावन जैसे ही गए और देखा, सारी गोपियों ने देखा कि भगवान कृष्ण के दूत उनका संदेशा कुछ लेके आए थे। नारद मुनि को जैसे ही देखा सारी गोपियां उनके पास आ गई, क्योंकि उसको पता था कि नारद मुनि कभी कभी जाया करते भगवान कृष्ण के पास, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तभी नारद मुनि को सारी गोपियों ने घेर लिया जैसे वृंदावन में प्रवेश किए, और नारद मुनि जैसे ही उनको उनके पास सारी गोपी आई तो उन्होंने कहा देखो एक बात है, भगवान कृष्ण को बुखार आया है। सारी गोपियों का मन जो है वो दुख में डूब गया, क्योंकि भगवान कृष्ण दुखी है ये कभी वो लोग सोच भी नहीं सकती। वो नहीं चाहते कि भगवान कृष्ण कभी दुखी हो गए, क्योंकि पूरा जीवन भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने दिया है, उनकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है बस। तभी जब सारी गोपियों को पता चला कि भगवान कृष्ण को बुखार है, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि उसकी दवाई भी मेरे पास है, बोले दे के आओ ना, तो इधर क्या घूम रहे हो, उसको दवाई दे के आओ। बोले कि वो दवाई तुम्हारे पास है। तभी गोपियों से कहा कि उनको बुखार आया है, लेकिन उनके बुखार की दवाई है कि अगर उनके भक्त अपने चरणों की धूली उसके सर पे लगाएगा तो उसका बुखार चला जाएगा। तभी सारी गोपियां यहां वहां थोड़ी नृत्य किए उन्होंने, थोड़ा यहां वहां नृत्य करने के बाद वहां से सारी मट्टी उठा दिए, गोनी में भरा और नारद मुनि को बोला ले जाओ। नारद मुनि को चक्कर आ गया, नारद मुनि ने बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको मालूम नहीं है कि भगवान कृष्ण पे अपने चरणों की धूली लगाने का फल क्या होता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया का भाव है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, उसके अपने चरणों की धूली उसके सर पे लगा देंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तभी गोपियों को कहा कि आप समझ नहीं पा रही हो, आपको करोड़ों वर्षों तक नर्क में सड़ना पड़ेगा। तब गोपियों ने क्या कहा जानते हैं, अरे करोड़ों नहीं खरबों वर्षों तक भी अगर हमको सड़ना पड़े हम तैयार है, किंतु बुखार यदि भगवान कृष्ण का जाता है और भगवान खुश रहते हैं तो हम इसमें खुश रहेंगे, नरक में भी हमारी खुशी है यदि वो खुश रहते हैं तो। ये भावना है, ये भाव को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर आकर प्रकट किया, इसी को भक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के लिए भक्ति करना और मिल जाएगा तो जानते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है, जब तक वस्तु नहीं होती है। और जानते हैं जो लोग कुछ कामनाओं को लेकर आते हैं ना, वो बहुत ही तीव्रता से भक्ति करते हैं, हम सोचते हैं कि यही शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर मालूम पड़ता है वो तो स्वार्थी था, वो भक्त नहीं था, है ना। अब जानते हैं कभी कभी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार होता है ना, वो हमारी बहुत इज्जत करता है, हमको बैठने के लिए टेप आसन देगा, हमको पानी पिलाएगा, चाय पानी देगा, लेकिन आप क्या सोचते हो, तुम्हारी सेवा कर रहा है, वो तुम्हारा जेब काट रहा है, खिला पिला के जेब काट रहा है। वैसे ही इस संसार में जो भगवान की पूजा कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं या फिर कुछ कामनाओं को लेकर पूजा करते हैं, तो वो लोग ऐसे ही है, कुछ खिला रहे पिला रहे, इतना भाव दिखा रहे, लेकिन उसका क्या है, जेब काटने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण बहुत चालाक है कि नहीं। भगवान जो है कृष्ण, बाकी सब लोग तो दे देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत पटु है। भगवान रियल में इस संसार के पिता है ना। भगवान कौन है, भगवान गीता में कहते हैं माता जगत पिता, माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं माता हम जगत, इस दुनिया का माता और पिता और धाता, धाता मतलब धात्री। आप जानते हैं एक बेटा होता है उसकी एक सगी माँ होती है, लेकिन उसका भरण पोषण करने के लिए कोई दूसरी भी उसको हेल्प करती है ना, तो उसको धात्री कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि माता धाता और पिता ये तीनों मैं हूँ इस दुनिया का, मतलब भगवान इस सारे दुनिया में जितने भी जीवात्मा है सबके पिता कौन है, भगवान है ना। तो आप जानते हैं भगवान जो है वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा दुखी हो, लेकिन आप जानते हैं तो आप कहेंगे कि हम तो दुखी है प्रभु, यदि भगवान नहीं चाहते तो हम दुखी क्यों है, क्योंकि आप चाहते कि आप दुखी रहे। इसका जवाब क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं दुखी होए, इसलिए हम यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। भगवान ने इतना सुंदर मार्ग दिया है कि यदि उस मार्ग पे कोई चलेगा तो भगवान के धाम में जहां पर नित्य आनंद है उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैंने सबसे पहले कहा था हम तटस्था शक्ति है, कहां पर है, हम लोग तट पे हैं। हमको अगर समंदर में जाके डूब के मरना ही है तो अभी भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान बहुत समझाते हैं जीवात्मा की आप मत जाइए, लेकिन ये जीवात्मा मरना ही चाहता है तो भगवान क्या कर सकते हैं। तो पिता जो होते हैं वो कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहते, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति संसार में आके भगवान के पास जाता है और जाके जो कुछ मांगता है तो भगवान देखते हैं कि इसके लिए लायक है कि नहीं है, समझ रहे। अगर कोई बेटा होता है, बेटा उसके पिताजी के पास जाके बोलता है पिताजी 10 रुपया दो ना, तो पिताजी को ज्यादा नहीं होता 10 रुपया चलेगा, लेकिन अगर पिताजी के पास जाके जो बोले कि पिताजी 5000 रुपया चाहिए, मतलब पिताजी भी सोचेंगे कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि ये सही उपयोग करना नहीं जानता है, इसीलिए है ना। लेकिन आप जानते हैं उससे विरुद्ध है देवी देवता, देवी देवताओं के पास जाके अगर मांगेंगे ना तो क्या करेंगे, ठीक है ले जाओ। कैसे है, इन दोनों का दृष्टांत देते हैं, भगवान जो है वो पिता के समान है और बाकी जो है देवी देवता वो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए, दुकान वाले होते हैं ना, दुकान वाले के पास जाके अगर आप उसको 50 रुपए देंगे तो आपको सामान तो दे गए, लेकिन वही पैसा लेके जब अपने पिताजी के सामान लो, कोई बेटा है अगर दुकान पे जाके बोलता है कि मेरे को एक सिगरेट का पैकेट चाहिए, तो दुकान वाला क्या करेगा, पैसा लेगा और सिगरेट का पैकेट, वो थोड़ी सोचेगा कि ये पिएगा ये मरेगा उसका क्या होगा, पीने दो मरने दो अपना दो, है ना। लेकिन अगर वही पैसा लेके पिताजी के पास जाए और पिताजी को बोले पिताजी एक सिगरेट का पैकेट चाहिए, पिताजी क्या करेगा उसको, है ना। तो ये भगवान है ना, ये भगवान का स्वभाव, भगवान सुयद है। भगवान गीता में कहते हैं कि ना सारे जीवात्माओं का सुयद हो, ये भगवान का व्यवहार है। इसलिए भगवान हमारे कौन है, भगवान कृष्ण है ना। और कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, यही भक्ति है। भक्ति की सरल व्याख्या क्या है, भक्ति की बहुत सरल व्याख्या है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, यही भक्ति है। भगवान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भक्ति है ना। तो सभी भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है और उनसे हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें या फिर मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि मैं अपने जीवन में ऐसा कौन सा प्रयास करूं जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्ण
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधाष्टमी महामहोत्सव की, राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो हम बहुत आभारी हैं इनके रघुनाथ को, जो कि भाभी मंदिर में ही रहते हैं लेकिन इस समय भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए वृंदावन में, कुछ 3 महीनों से वृंदावन में है, लेकिन वहाँ से उन्होंने इस राधाष्टमी प्रोग्राम में वहाँ से एक दिन के लिए यहाँ पे आए, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे।
तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो प्रोग्राम शुरू है उसमें से अभी प्रवचन कथा का हो चुका और इसके बाद अभी 5 परफॉर्मेंस हैं बच्चों के द्वारा। पहले सबसे छोटे बच्चों के द्वारा एक छोटा सा संघ, उसके बाद फिर से उनसे बड़े बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर और लास्ट में महाराष्ट्र के ऊपर डांस है। तो इस प्रकार से कल्चर जो प्रोग्राम है उसको सभी लोग उसका आनंद लीजिए। हरे कृष्णा।
पास जा रही नहीं आगे ऐसा मत करो वरना मुझे धन मिलेगा। अच्छा होगा कल मुझे खुशी मिलेगी, मैं जा रही हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद और एक संग है बच्चों के द्वारा।
सबके मुंह पे बहुत ही खुशी थी, बहुत अच्छा लगा ना। अब जानते हैं क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान कृष्ण की अगर उसकी नाटिका को प्रस्तुत करते हैं ना तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये वास्तविक आत्मा का खुराक है। अब जानते हैं शरीर को चलाने के लिए हम कुछ खाते हैं ना, लेकिन आत्मा को पुष्ट करने के लिए भगवान की लीला यही हमारा वास्तविक खुराक है, जिसको हमने बहुत वर्षों से नहीं दिया, इसलिए सूख गई है। और ऐसे भी भगवान कृष्ण जो है वो सर्वाकर्षक है। सर्वाकर्षक का अर्थ जानते हैं? जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं देख रहा था सब लोग बच्चे होके खड़े होके सब देख रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहा, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वाकर्षक है। सर्वाकर्षक मतलब जो सबको अपनी ओर खींच ले। कृषि भूवाचक शब्द निवृत्ति वाचक पयोरेत्यो परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण का अर्थ होता है जो हमेशा अपनी ओर सबको खींचे और आनंद प्रदान करते रहे, है ना। तो भगवान कृष्ण की भले ही बहुत छोटे छोटे, वास्तव में मैं सोच रहा था कि बहुत छोटे छोटे कहिए और छोटे छोटे द्वार है ना, बहुत छोटे थे, किंतु इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। और जानते हैं ये बच्चे संस्कार स्कूल, एक हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा एक संस्कार स्कूल चलता, उसमें नित्य प्रतिदिन ये लोग आके इस भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते हैं, उसकी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा अपने जीवन में वो इस प्रकार सुंदर अच्छा नृत्य आदि प्रस्तुत कर पाते हैं। तो हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है, और भी बच्चे लोग में है, संसार कुल के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत सुंदर रूप से नाटिकाएं प्रस्तुत की है, तो आइए हम उनका भी आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की ये कुसुम सरोवर की लीला है। भगवान ने आप जानते हैं वृंदावन में कई सारे कुंड और आदि को प्रकट किए हैं, उसमें भगवान की बहुत सारी लीला है। उसमें कुसुम सरोवर की जो भगवान की लीलाएं हैं, भक्त लोग ने उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण और महामंत्र से उसको आप अभिनंदन व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
क्या कृष्णा आज तुम नहीं आओगे? फिर राक्षस को कौन मारेगा? कोई ना कोई राक्षस तो आ ही जाता है।
आज के दिन तुम नंदगांव के आसपास ही गया थरा, मैं दवाई लेता हूँ, पेट दर्द बंद हो जाए तो आ जाऊंगा।
राधे देखो ये वन कितना सुंदर है।
हाँ राधे, यहाँ के फूल कितने सुंदर हैं।
हाँ सखियो, हम इन फूलों की कृष्णा के लिए माला बनाएंगे, तो चलो फूल तोड़ते हैं।
शायद कोई आ रहा है,
शायद इस मन का पानी आ रहा है।
हे लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हम फूल तोड़ रहे हैं।
क्या तुम्हें पता नहीं ये बगीचा मेरा है और तुम बिना पूछे फूल तोड़ रहे हो?
हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं,
क्योंकि हमारी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है
और हम कहीं से भी फूल तोड़ सकते हैं।
मेरा मन तो सिर्फ कृष्णा के प्रति आकर्षित होता है, सिर्फ ये कौन है? कृष्णा सखियो, ये तो मनमानी कृष्णा है।
देखो
देखो मेरे सारे फूल खराब हो गए, मैं तो इन फूलों की आपके लिए माला बनाने वाली थी। कुछ नहीं राधे, लाओ मैं यमुना में से दूर आता हूँ। कृष्णा बहुत चतुर है, इस बहाने वो चंद्रावली से मिलने जाएगा। राधे लो राधे, इस सरोवर में तुम अपने फूल धो लो। राधे आज से इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर और तुम्हारा नाम बन बिहारी। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे।
आदि पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक है इन गोपियों के विषय में, जिसमें कहा गया है, अब देखें होंगे कि गोपियां बहुत सुंदर सज धज के आती है कि नहीं। तो हमने तो यही सुना था कि भक्तों का जीवन सादा और उचित था, लेकिन गोपियां तो बहुत सज धज की है। इसलिए आदि पुराण में है इन गोपियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कहा है कि निजान नाम भी आप गोपियां ममेश समुपास ताभ्यं परम नमे पार्थ निकुट प्रेम भाजन। अर्थात उसने कहा गया है कि गोपियां जो है, भगवान ने इस बात को बताया कि गोपियां जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात भगवान मुझे देख के खुश हो जाए इसलिए अपने आप को श्रृंगार करती थी, बहुत सजा देती थी। इसलिए नहीं कि मैं किसी और को दिखाऊंगी, अपने शरीर को किस लिए सजाती थी गोपियां, क्योंकि हमें देख के भगवान प्रसन्न हो जाए, इसलिए अपने शरीर को बहुत सुंदर सजा रजा के भगवान कृष्ण के पास जाती थी। इस प्रकार गोपियों का सजना गजना या फिर उनका जो भी क्रियाकलाप है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हुआ करता था। और भी गोपियों की बहुत सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के साथ है, आइए हम उसका रसा स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
तो हम क्या कर सकते हैं?
आप जल्दी से इसका उपाय। इसका तो एक ही उपाय है, उनके भक्तों की शरण लें। क्या आपको पता है अगर आपकी शरण लें प्रभु के घर में जाएगी तो आपको नरकवास भुगतना पड़ेगा। हमारी शरण से प्रभु को क्षण भर के लिए आराम मिलता है तो हम कई जन्मों तक नरकवास को भुगतने को तैयार हैं।
मेरे भक्तों में गोपिया सर्वोच्च भक्त है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 देखा। इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर नहीं पर अपर दोनों जगत के अंदर अगर कोई सबसे श्रेष्ठ भक्त है तो वो है गोपिया। और गोपियों की सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपियां भगवान को क्यों प्रिय है जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर राधा रानी है। राधा उन गोपियों की सखी है, इसलिए भगवान को सारी गोपियां बहुत प्रसन्न है, पसंद है। उसी प्रकार यदि हम भी राधा रानी के संग में जुड़ जाएंगे तो भगवान भी हमको क्या करेंगे? अपना लेंगे। इसलिए भक्त जब भगवान से कह देता है कि ये मेरा है, क्या कहता है भक्त? यदि भगवान से कह दे कि ये मेरा है तो भगवान को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान हमें क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। इसलिए वैष्णव ने भजन गाया है कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते हे प्रभु वैष्णव हो, कृष्ण तो आपके हैं और आप जो है कृष्ण देने में समर्थ है। भगवान के भक्तों से एक भक्त प्रार्थना करता है कि कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते भागो भाई तव पाछे पाछे, मैं तो आपके पीछे पीछे भागूंगा जब तक आप हमको कृष्ण नहीं दे। तो ये जो कृष्ण रूपी खजाना है वो किसके तिजोरी में है? भगवान के भक्तों में। लेकिन आप जानते हैं भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं और इन लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला या फिर भगवान को सबसे ज्यादा आनंद कौन सी लीला देती है? रास लीला, है ना। कौन सी? रास लीला। उसी को भक्तों ने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, भले ही उसमें कुछ त्रुटि रहे लेकिन आप उसको बहुत ऊंची दृष्टि से देखिए जिससे आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब जानते हैं रासलीला भगवान कृष्ण ने जब रचाई थी तब उसमें कितनी गोपियां थी, उसमें वैसे तो 35 करोड़ से भी ज्यादा गोपियों का वर्णन है। तो आप कहेंगे कि वृंदावन तो बहुत छोटा है, है ना? तो भगवान ने राज कैसे किया होगा इतनी सारी गोपियों के साथ? भगवान का धाम जो है वो चिन्मय है, हमारे ये वापी के जैसा नहीं है कि जितना प्लॉट लेगा उतना ही वो ज्यादा रहेगा। भगवान का धाम ऐसा चिन्मय है कि यदि भगवान की इच्छा है कि मुझे यहाँ लीला करना है तो वो जगह का विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर भगवान वहां पर लीला करते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अरे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और बहुत एक सुंदर प्रोग्राम और भी बाकी है। ये रासलीला जो है वो कितने समय के लिए चली थी ये जानते हैं हम? ये रासलीला ब्रह्मा जी के कल्प तक, ब्रह्मा जी का कल्प किसको कहते हैं? आप ब्रह्मा जी के आयुष्य की अनुमान नहीं लगा पाएंगे, है ना? तो ब्रह्मा जी का कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं उसके 50 वर्ष, उतना वर्ष बीत गया था उस रात्रि के दिन, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला। तो भगवान ने उतने सुंदर लीला इतने वर्षों तक चलाई थी क्योंकि भगवान की सबसे प्रिय लीला है। और आप जानते हैं कि ये गोपियां भी थोड़ी बड़ी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो गोपियां राज की थी उनकी क्या उम्र थी ये जानते हैं आप? 5 से 7 वर्ष। कितनी? 5 से 7 वर्ष से ऊपर की कोई गोपी नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग में उल्टा घुसा ही हुआ है तो क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि वो गोपियों की उम्र 5 से 7 वर्ष से अधिक कोई नहीं थी, बहुत छोटी छोटी गोपियों के साथ भगवान ने ये रासलीला की। तो इसमें कभी भी हमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी ने इस रासलीला का फल प्रदान करते हुए कहा है कि इस रासलीला को अगर कोई बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा तो वो अपने जीवन में काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो आइए अभी हम राधा कृष्ण का पुष्प अभिषेक करेंगे और साथ में कीर्तन का भी आनंद लेंगे। सभी भक्त लोग अपने आसन से खड़े होकर कीर्तन में नाच भी सकते हैं और अभिषेक का आनंद भी ले सकते हैं। सबसे पहले उससे आरती होगी भगवान की, तो आरती को दर्शन कीजिए। एक भक्त का प्रयास है, हम उसको बहुत भाव से श्रवण करेंगे, श्रवण करने योग्य। बहुत सुंदर भजन एक भक्त ने गाया है, आप सब लोग धैर्य से खड़े खड़े भी सुन सकते हैं। दीपाली माता जी
नव नवरंगी त्रिभंगी जय हरे 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 श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद बहुत अच्छा है। अभी आप सब लोग को मैं आशा करता हूँ कि जो यहाँ पर नाटिका प्रस्तुत की गई बहुत अच्छी लगी हो, तो उन भक्तों को थोड़ा सा उपहार के रूप में भक्तों ने कुछ लाए हैं तो उसको हम दे देंगे। दो मिनट प्रतीक्षा कीजिए, कोई भक्त लोग कुछ देना चाहिए। तो बहुत लोग हम इनका हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करते रहेंगे।
धैर्य के साथ देखिए,
वो है नीव मंजरी उन्नति नैति हरिप्रिया अर्थवी श्लोक वृषाही श्रेयांशी कृष्णप्रिया मोक्षा पायल राधा निकिता दीपाली और मानसी। यहाँ जो हाजिर है उसने ये जन्माष्टमी के हैं।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
उनका नाम मैं बोलूंगी नीव मंत्री शौर्य वृंदा जो छोटी छोटी गलियां में हाथ किया था नीव मंत्री वृंदा और शौर्य और जय राधे जय कृष्णा में वृषाही श्रेयांशी हरिप्रिया उन्नति और रानो कृष्णप्रिया जिसने एक्ट किया था कुसुम सरोवर में राधा निकिता मोक्षा पायल और त्रिशा महाराष्ट्र में अग्नि वैशाली माता जी कृपाली माता जी कृष्ण माता जी अंजनी दृष्टि अश्विनी और गोपीकर्ता को नामा था उसे हरि और यश पत्रांगों में दीक्षा दिलपर देवांशी गोपी में मेघा भवन संख्या
कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram ram hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare hare krishna bhagwan ko krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna bhagwan ko krishna hare hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram hare hare krishna hare krishna 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 hare hare krishna hare krishna 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare hare ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram hare hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram
Thank you. हरे कृष्णा हरे Thank you.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare